आप सभी फरिश्तों के बीच में एक विशेष रूहानी फरिश्ते हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय करुणा भाई साहब। आप सभी जानते हैं, कौन जानते हैं? करुणा भाई साहब, जिनका वास्तव में करुणा करा नाम है और बाबा उनको करुणा निधि बुलाते थे। और जैसा आपका नाम है, आपने अपने नाम को सार्थक किया है इस ईश्वरीय ज्ञान में, अनेक आत्माओं पर अपनी शुभ भावना और शुभ कामना के आधार से अनेक आत्माओं को, या कहे कि भाई बहनों कुमारियों को सींचा है आपने, अनेक आत्माओं को ईश्वरीय नया जीवन दिया है। अपने जीवन काल में आपने 60 वर्ष से ऊपर आप बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं। उस जीवन काल में आपने कई सारे सेंटर खोले भी हैं, साउथ के जो भी, चाहे वो मद्रास हैं, कर्नाटका हैं, तमिलनाडु हैं, केरला हैं, इन सब स्थानों पर आपने अनेक सारे सेंटर खोले हुए हैं और अनेक आत्माओं का उद्धार किया है। तो आज भाई साहब हम सबके बीच में अपनी शुभ प्रेरणा लेकर आए हैं। वैसे तो भाई साहब की जो कोर सेवा है आप सभी जानते हैं, मीडिया में भाई साहब मीडिया के चेयरपर्सन हैं, मीडिया विंग अपने जो है, और साथ में पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग टीवी, उसके आप फाउंडर हैं। और आपका सदैव यही संकल्प रहता है कि कैसे अनेक आत्माओं का कल्याण हो, कैसे अनेक आत्माओं तक बाबा का परिचय, बाबा का संदेश पहुंचे। कोई भी एक भी आत्मा रहना जाए, जिसका यह मीडिया ही एक माध्यम है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे और भी कोई भी मीडिया के साधन हो, आपका हमेशा ही यही संकल्प रहता है कि सभी आत्माओं तक बाबा का परिचय पहुंचे। और ब्राह्मण आत्माओं की पालना के लिए भी आपके मैसेज, आपके संकल्प चलते रहते हैं। तो आज भाई साहब हम सबको अपनी शुभ प्रेरणाएं देंगे। घर घर बाबा पहुंच गए, आप सबके घर में आए हैं बाबा, घर घर में बाबा को पहुंचाने के निमित्त आप हमारे भाई साहब हैं। उनको कितना न दुआए, कितना न शुक्रिया कहे, उतना कम है, क्योंकि इतनी आत्माओं की, जो ब्राह्मण आत्माओं की एक ही चीज है, क्या चीज है? बाबा। और वो बाबा अगर घर बैठे हर एक आत्मा को मिल जाए, मुरली मिल जाए, बाबा के सॉन्ग्स वगैरह हैं, ये सब हमको घर बैठे मिल जाए, तो उन आत्माओं को कितनी दुआएं मिलती हैं। तो ऐसे भाई साहब को निवेदन, शुभ प्रेरणाएं।
आप सबको देखते हुए मेरा भी बचपन का दिन याद आता है कि जब मैं पहली बार मधुबन आया था, मधुबन आने से पहले जो प्रेरणा मिली, जो एक बाबा के अति मीठे बच्चे हमारे दादी हृदय पुष्पा दादी जी बेंगलोर आए थे, उनको देखते ही, हालांकि उस समय पर मैं हिंदी भी इतना न समझता था न बोलता था, परंतु उनको देखते ही दिल में ऐसा लगा कि भाई ये कोई और है। भले बहुत संत महात्माएं दक्षिण में है, वैसे कहा जाता है जो आज इस दुनिया में जितने फिलॉसफीज है, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शक्ति विशिष्टाद्वैत अनेक है वो सब साउथ से आए हुए हैं। इतने संत है वहां, बचपन से मिलने का सुनने का बहुत शौक था, परंतु वो नहीं साक्षात्कार या ऐसा लगे कि भाई ये मेरा जीवन का कोई गुरु है या इस तरह से, कभी ऐसा लगा नहीं था। पर दादी जी को पहली बार देखते ही, और वो जो योग में बैठी थी जैसे हम सभी बैठे थे, तो वो जो योग में जब वो गई तो इतनी खुशी इनकी चेहरे में और इतनी झलक, तो मैं उसी वक्त ही समझ गया था ये कोई और है, ये इस दुनिया के नहीं है। तो जब मुरली वगैरह क्लास सुना तो उसके बाद मैंने पूछा 3 दिन के बाद, ये कहां से आता है मुरली? तो उन्होंने कहा माउंट आबू में स्वयं शिव बाबा आए हैं, जहां आप सभी आए हैं अभी, तो वहां से वो सुनाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा। तो वो हमको वहां 10-15 दिन के बाद वो मुरली आता था जो हम सुनते थे। तो मैंने कहा स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आए और ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, और वो हमको 10-15 दिन के बाद हम सुन रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी आबू जाऊंगा, पहले वहां भगवान से मिलके भगवान के मुख से मैं सुन के आऊंगा। उन दिनों में ये कहा जाता था कि भाई कम से कम 1 साल तो स्टडी करे पक्का होवे, तो उसके बाद आने की छुट्टी मिलती थी। तो मैं 3रे दिन से ही जिद करने लगा, नहीं मैं तो जाऊंगा अब। दादियां कहते थे ऐसा नहीं, कभी कभी बाबा बाहर जल जाते हैं तो इसलिए हम पहले पता करेंगे बाबा वहां है या नहीं, तो चिट्ठियां लिखेंगे, उत्तर आएगा। मैंने कहा गया, तो फिर भी दादियां हैं सच्चे दिल के हैं, उनका हर शब्द जो है दिल के लगता है। तो हमने 3 मास के बाद फिर वहां से पहली बार बाबा के पास आया। तो पहली मुलाकात में ही, पहले मम्मा से मिलने का था, तो मम्मा देखते ही जैसे अभी बैठे थे हम तपस्या में, तो इस यज्ञ में बोल बहुत कम था। सब कहते थे निष्ठा में बैठो, दृष्टि दो, ये शब्द उन जमाने के, निष्ठा माना तो भाई योग में बैठो और दृष्टि दियो, तो ये होता था। तो जब भी कोई मिलते हैं, किसी से भी मिलना है, बस दृष्टि लेके आनंद होता था, खो जाते थे। तो जैसे ही मम्मा के सामने बैठा, मुझे भी पता नहीं पड़ा खो गया मैं। तो मम्मा कहती है अरे ये तो कलप पहले वाला बच्चा। तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया मम्मा ने क्या कहा उस समय पर, कुछ कहा तो सही। तो मैं फिर बाहर आके हमारे साथ जो दीदी आए थे उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये मम्मा ने क्या बोला? तो उन्होंने कहा कि भाई ये सृष्टि जो है ना, ये कल्प कहते हैं उसको, 5,000 का, और आप जो है 5,000 साल का बच्चा है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि उस समय पर कुछ समझ में तो नहीं आता था। मुझे ट्रेन में पक्का करा के आते थे, बाबा आपसे पूछेंगे आप कब बाबा से मिले, तो आप बोलना 5,000 साल पहले मिले थे। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है मैं बोल दूंगा। तो पक्का कराते थे, बोलेंगे ना। मैंने कहा हाँ बाबा जरूर बोलेंगे। तो एक दिन क्लास में बाबा ने पूछ लिया, बच्चे आप पहली बार आए हैं? जी बाबा, जो सिखाया हुआ सब भूल गए बाबा के सामने, बाबा हंस लिए, टीचर के तरफ देख रहे, यही पढ़ा के। तो इस तरह से बाबा मम्मा से मिलने का, बस दृष्टि लेते थे और गुम हो जाते थे। अब मैं एक बात क्यों याद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वही याद आ रहा है। तो मैं अब जो उनसे भी मैं मिल रहा हूं, ये भी मेरे जैसा ही, ये 5000 साल के कल्प पहले वाले बच्चे हैं जो बाबा के। तो आप सबसे भी मैं पूछू ना, कोई भी ये नहीं समझता है कि भाई मैंने अपना मेहनत करके यहां ज्ञान में आ गया। वो नहीं, बाबा ने चुन चुन के लाया है। बाबा ने कैसे एक एक को पकड़ के लाया, किस तरह से लाया, तो कोई हम लोग ऐसे कोई लायक नहीं थे। जब बाबा ने हमको पकड़ा तो हम तो जैसे दुनिया के थे ऐसे ही थे, परंतु कैसे बाबा एक एक को चुन करके हम लोगों को आज यहाँ बिठाया है। तब मुझे वो दिन याद आया, तो कैसे मैं आया था बाबा मामा के सामने और नजरों से निहाल हो गए। तो मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक मम्मा दूसरा न कोई। इस प्रकार की जो हमारी जो भावना, जो आज सचमुच मम्मा ने जो कहा था, तो अभी तक 60 साल के बाद भी यहाँ ही हूँ, जो मम्मा जानती थी उस दिन। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस नॉलेज में जो भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो बाबा इतना हमको अच्छी तरह से ज्ञान दे देते हैं। तो जितने भी आप बैठे हैं, सबको ज्ञान पूर्ण रूप से मालूम है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, दादी जैसे बोलती है ना तीन बातें, सब पक्के हैं, सबको मालूम है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शिव बाबा का बच्चे हैं, परम धाम के हैं, सब पक्के हो गए हैं। और किसी को भी समझाना हो तो भी बिल्कुल सब होशियार है। बाबा ने सर्टिफिकेट भी दे दिया था, कहीं 100 मार्क देना हो तो मैं तो 110 दे दूंगा। बच्चे इतने पक्के हैं ज्ञान में, तो इसमें कोई कमी नहीं है। परंतु सब्जेक्ट 4 दे दिया है बाबा ने, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं। हम तो ज्ञान में पक्के हो गए, सब बातें मालूम है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा तो हम बन गए। मुझे एक बात वो भी याद आता है, तो वैसे एक दिन ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे थे, बाबा क्लास करा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, आप सबको बस एक अपनी जिंदगी देना है, एक लाइफ, वन लाइफ। भले आप छोटे हैं, मैं तो 20-21 का आया था, अभी तो 81 है बॉडी का। तो बाबा ने कहा बस एक जीवन दे देना और मैं 21 जन्म का देता हूं। वाह, इतना बड़ा कौन किसी को दे सकता है। तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बाबा कह रहे थे उस टाइम पर, जो दादियों का बाबा का एक एक शब्द जैसे एकदम तीर जैसे लग जाता था। तो हमने कहा एक जन्म है ना, क्यों नहीं बाबा को हम दे देंगे। परंतु आज हमको ऐसा लगता है, आप सबको देख के, बाबा 21 जन्म नहीं भाई, ये भी जन्म एक ऐड हो गया है इसमें, 84वां जन्म है, 84th लास्ट बर्थ में भी आप सबको देखता हूं मैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब में यह नशा है, दुनिया के करोड़ों लोगों से हम तो सब अच्छे हैं, उन सब से हम अच्छे हैं। जो समझते हैं वो हाथ उठाओ, अब बताओ ना, ऐसा अच्छा जीवन बाबा हमको लास्ट का भी दे। मैं कहता हूं बाबा, हमको तो आपने 84 जन्म ही पूरा दे दिया है। पर एक बात कभी कभी आता था, 84 जन्म तो हो गया, तो ये बीच बीच में जो शरीर छोड़ के गए तो उनका क्या होगा, तो उनका क्या 85th जन्म होगा या क्या होगा? तो बाबा कहते थे ये ना ये सब एडवांस पार्टी में गए, अब बताओ। बाबा ये नहीं कहते थे कि भाई ये तो जन्म ले लिया ये करेंगे अभी, नहीं। बाबा कहते थे कि किसी ने भी जो बाबा के बनने के बाद किसी भी कारण से शरीर छोड़ते हैं तो हिसाब किताब पूरा हुआ, अब बाबा के पास ही जाने का है, अंत मते सगत है। तो ये बीच में, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तो कहीं भी कुछ भी करेंगे एडवांस पार्टी में सेवा ही करने लिए गए हैं, ये भी फाइनल हो गया भाई। तो अब मुझे एक श्री कृष्ण की चरित्र याद हुआ, तो जब हम सब बाबा के पास आए तो जैसे कृष्ण के जीवन में दिखाते हैं कि वह पहले पहले उसने वो सांप के ऊपर नाच करके सबको बता दिया कि भाई मैं तो सांप को भी जीत रहा। तो कौन सा सांप है? पांच विकारों का। बाबा के पास आते ही पहला दिन, दूसरी दिन, तीसरी दिन, चौथी दिन फिर समझ में आ गया भाई अभी करना क्या है। जो आज की मुरली अविक मुरली इतना अच्छा था, पवित्र 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 पवित्र, मैं आत्मा भी पवित्र हूँ, स्वधर्म भी पवित्र हूँ, स्वदेश भी पवित्र हूँ, मेरा बाबा भी पवित्रता का सागर है, तो सारा ही, तो हमारे मन में बाबा ने बीज डाल दिया पवित्रता का। जैसे ही पवित्रता की बात समझ में आ गई तो हम सब बच्चे धीरे धीरे जैसे ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण माना बाबा पवित्र हर चीज में हर प्रकार से, वो भी पूरा हो गया। अब कुछ समय ऐसा आया जो दूसरा सीन था श्री कृष्ण के साथ, भाई क्या करता था वो तो गाय लेकर के बेचराने ले जाता था, तो हम सब बच्चों को भेज दिया, किसी को कहीं, किसी को देश विदेश सब जगह, एक ही काम किया हम लोगों ने। बाबा ने जो ज्ञान सुनाया वो सुनाते गए सबको, सेवा इतना कराया, होश ही नहीं था। कैसे समय गया, कैसे हमारे 60 साल बाबा के साथ कैसे बीते हो वो समझ में ही नहीं आया, न दिन याद आता है न रात। तो एक ही काम, सेवा सेवा सेवा, ज्ञान पहले पूरा कर दिया, सेवा का भी पूरा कर दिया, तपस्या भी करते थे। अमृत वेला पहला दिन से ही समझ में आ गया था, अमृत वेला भी किया, फिर अभी नुमा शाम भी एक वो भी पक्का करा दिया, कितना अच्छा लगता था, हम योग में बैठे थे। फिर बीच में दादी ने ये ट्रैफिक कंट्रोल भी कर दिया था दिन में भी, तो ये सब करते करते योग में भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, पर ये जरूर आता था। दादियां जो है वो कराची में 14 साल तपस्या किए, 14 साल तपस्या, और हम तो ठीक है। परंतु देखा समय प्रबल है कभी कभी, जैसे समय हमसे पूछ के नहीं जाता है, वो तो चलती ही रहती है। कहते तो वो अब हमको कहां ले जा रहा है? हमने यही देखा, समय भी अपना काम कर रहा है। बाबा ने कहा था समय से पहले करो बच्चे, समय से पहले करो, वो समझ में नहीं आता था हमको क्या बाबा कह रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं सेंटर्स खोलने में या हर जगह में करने में। पर अब समझ में आ रहा है, क्यों? अब बाबा ने हमसे अभी नहीं पूछता है, हमको अभी नहीं बताता है। जब से बाबा ने अविर बाबा समाप्ति कहा ना, उसके बाद हम बच्चों से बाबा कुछ नहीं कह रहा है। ऐसा समय जिसको आजकल क्या कहते हैं, कोरोना का समय, तो हमको क्या किया, दुनिया भय में है, पता नहीं उन लोगों को क्या होगा कल, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, उनकी जो पूछो ही मत। पर हम बच्चों के लिए तो घर में बैठो और सेफ रहो, बस वही कहते हैं। तो मुझे याद आया, मम्मा भी करती थी, अंतर्मुखी सदा सुखी, मम्मा को नंबर वन बाबा कहते थे, नहीं बाबा नंबर वन, नहीं नहीं मम्मा नंबर वन, इन दोनों की हम देखते थे। तो मम्मा नंबर वन क्यों थी, क्योंकि मम्मा कहती थी जब क्लास कराना होता है तब मैं आती हूँ, देखती हूँ, बोलती हूँ, इसके बाद मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं बाबा के साथ रहती हूँ। तो हमारे लिए भी अभी बाबा ने कहा घर में बैठो, भाई घर में बैठो माना अंदर, अपने आप को मैं और मेरा बाबा, जानकी दादी का है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो लास्ट मंत्र देके गई हम सबको, इतना अच्छा लगता है बस बैठ के, केवल घर बैठो अंदर अपने घर में और ऐसा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये जो टाइम अभी बाबा ने जो दिया है, समय का हम सबको वरदान है, दुनिया के लिए जो भी हो, पर हम बच्चों के लिए तो अभी कोई हमारे नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे बोलते ना खाली हाथ आए काले हाथ जाना, ये सब ज्ञान था, तो अब समझ में आ रहा है अब काली हाथ ही रहे और काली हाथ ही जाना है। तो जाना कैसे है, जो भी होगा बाबा ने कहा समय ऐसा आएगा तो आप बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, परंतु एक काम और बाकी बाबा का हम बच्चों के ऊपर आशा है। ज्ञान से तो हमने बहुत संदेश दिया, परंतु चुप रह करके जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं फरिश्ता, जो इस समय पर वरदान देने का, सारे सृष्टि को प्रकाश देने का, तो सारा विश्व अभी हम बच्चों के तरफ देखेंगे, ज्ञान के लिए नहीं। जैसे मैंने पहली बार हृदय पुष्पा दादी जी को देखा था, वो तो एक देवी लग रही थी मुझे। यहां जब पहली बार मधुबन में आया, जिनको भी देखूं ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवियां हैं। तो इसी प्रकार हम बच्चों को बाबा ने थोड़ा सा अभी समय दिया है देवी बनने का, देवता बनने का, लास्ट जैसे हम बच्चों को इस समय पर बाबा ये समय दिया है। तो उसके साथ साथ बाबा ने ये भी कहा था, तो जब शरीर छोड़ेंगे बच्चे, तो बाबा थोड़ा सा जो इसका भी हिसाब किताब हो वो पूरा करा के फिर ऊपर ले जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा था। पर हम नहीं चाहते थे, हम कहते बाबा नहीं नहीं हम तो यहाँ ही सब कुछ पूरा कर देंगे, हम थोड़ा ज्यादा योग करेंगे बाबा, हम पूरा करके जाएंगे ऐसा। तो उसकी अभी परीक्षा बाबा ले रहा है। कई बार ऐसा तो नहीं सोचते हैं, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, फिर से वो सर्विस चलेगा, फिर से लोग आ जाएंगे, फिर बिल्कुल नहीं। हम बच्चों को अब बाबा ने ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है अपने आप को फरिश्ता बनाने का। अब हमको वाचा से नहीं बाबा की प्रत्यक्षता, परंतु अपनी स्थिति थे। जैसे दादियां सब आप लास्ट स्टेज देखेंगे ना, एक सैंपल अभी भी हमारे सामने देखो, आज गुलजार दादी है, दृष्टि देती रहती है। हम अव्यक्त बाबा को भी कहते थे बाबा बस दृष्टि दे देना, बस मुरली बोले नहीं भी सुना दे तो हर्जा नहीं, ऐसे ऐसे कहते थे हम लास्ट लास्ट में जब दादी जी का थोड़ा तबीयत का होता था। तो समय वो आ गया है अभी वाचा से नहीं दृष्टि से। तो बाबा भी आप सबको देख रहा है, मेरे बच्चे फरिश्ता बन करके मेरे पास आएंगे, परंतु दुनिया को भी साक्षात्कार होगा। बाबा हम सब बच्चों को उस स्वरूप में सबको साक्षात्कार कराएगा। तो इसलिए आप महालक्खी हो कि बाबा के घर पे फरिश्ता का ड्रेस लेके जाना है। यहाँ से आपको सौगात बाबा इस बार यही दे रहा है, आप सब फरिश्ते हो, अपने फरिश्ते का ड्रेस बिल्कुल रेडी रखा है सबका। जैसे ही आप बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा हम सब के लिए ऐसे हाथ करके खड़े हैं, तो हम सबको अभी बाबा के पास फरिश्ता बन के जाना है। यही संकल्प से आप सब आए हैं और बाबा भी आप सबको यही चाहते हैं, तो इसीलिए बहुत बहुत लक्की आप सभी हो। ओम शांति।